दोस्तों, मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और आप समाप्त फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वेरितास की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज को दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम अरसाल करने का भी शुक्रिया। सामईन, आज के प्रोग्राम सुनने से कबल समाप्त फरमा लीजिए हमारे पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्रामों को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu.veritas-asia.org। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम सुनिए और हमारा पेज भी जरूर लाइक कीजिए, जो कि है आरवी उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना और इन पर कमेंट करना हरगिज मत भूलिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरवी उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, हमें आरवी उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। दोस्त, आज हफ्ता है और आज के रोज आप प्रोग्राम समाप्त फरमा सकेंगे नगमाए सहर और फन की दुनिया। दोस्त, आपको बताते चले कि ये प्रोग्राम फादर कैसे फिरोज की जेर निगरानी तैयार किए गए हैं, तो आइए समाप्त फरमाइए आज के प्रोग्राम।
हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका छठा बाब 24 से 34 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि कोई आदमी दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि या एक से कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को हकीर जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी जान की फिक्र न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि हम क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से ज्यादा बेहतर नहीं? आसमान के परिंदों को देखो कि वो न बोते, न काटते, न खत्तों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनकी परवरिश करता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में कौन है जो फिक्र करके अपने कद को एक हाथ बढ़ा सकता है? और पोशाक की क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसनों को गौर से देखो कि किस तरह बढ़ती हैं। वो ना मेहनत करती ना काटती हैं, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि सुलेमान भी अपनी सारी शानो शौकत में उनमें से एक की मानित आरास्ता न था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाती है, यूं पहनाता है, तो ऐ कम एतकादो, क्या तुमको बहुत ज्यादा ना पहनाएगा? इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्ते को ढूंढो, तो ये सब चीजें भी तुम्हें दे दी जाएंगी। बस कल के दिन के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी फिक्र आप ही कर लेगा। आज का दुख आज ही के लिए बस है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के आयात पर अगर गौर किया जाए तो एक लफ्ज जो मुसलसल हमें अपनी तरफ राग़िब करता है वो है ढूंढो, यानी मुसलसल पीछा करो, रास्तबाजी का पीछा करो। रास्तबाजी जिसकी हमें रोजमर्रा जिंदगी में बहुत जरूरत है। बाकी तमाम चीजें जिनका पीछा हम करते हैं, ये आरजी हैं। जैसा कि आज के कलाम में खुदा ने बताया कि हम ये मत सोचें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, बल्कि हमें सिर्फ खुदा और उसकी बादशाही की फिक्र करनी है। खुदा की बादशाही और रास्तबाजी का पीछा करना है और इस अमल को बार बार दोहराना है। और जब हम इस अमल में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि खुदा जो कि हमें बादशाही और रास्तबाजी अता करता है, इसके साथ ही हमें उन चीजों की भी बरकत देगा जिनकी हमें जरूरत है। ए खुदावन, सच तुझ में मेरी रूह की ख्वाहिशात इत्मीनान पाती हैं। वो चीजें जो मेरी आंखों ने देखी कुछ देर बाद बोरियत वाली हो जाती हैं। जिन नुमाइशी चीजों का मैंने पीछा किया तमाम तर मेरी आधी सरगर्मियों ने मुझे खाली और गुलामी में छोड़ दिया। मैं सिर्फ तुझ में उम्मीद और मदद हासिल करता हूँ। करम करके मोहब्बत, दुरुस्तगी और रहनुमाई मुझे अदा कर और मुझे अपने जलाल की तरफ माइल कर। आमीन।
برابر سامعین، حاضر خدمت ہے آپ کے میزبان عامر سہیل اور فرانسس زیویئر۔ پروگرام پیش خدمت ہے فن کی دنیا۔
سنائیے سامعین، کیسے حال احوال ہیں آپ کے؟ کوئی امید کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی دوست خداوند کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔
سامعین، جب ہم فن کی بات کرتے ہیں یا فن کی دنیا کی بات کرتے ہیں تو یقیناً پاکستان میں بہت سے ایسے فنکار گزرے ہیں جنہوں نے اپنا نام کمایا اور بے پناہ شہرت حاصل کی۔ دوست، ہم اکثر اپنے پروگراموں میں ایسے فنکاروں کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں اور بہت سے کلاسیکی موسیقی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا بھی تعارف کرواتے ہیں، لیکن ہم آج کے پروگرام میں آپ کو ایک ایسی خوبصورت گلوکارہ کے حوالے سے بتانا چاہ رہے ہیں جنہوں نے بے شمار گیت گائے اور بے شمار گیت ان کے جو تھے وہ مقبول بھی ہوئے۔ دوست، انتہائی خوبصورت انداز میں یہ گانوں کو جو ہے وہ پیش کرتی ہیں اور انتہائی خوبصورت انداز میں مشکل سے مشکل سر بھی جو ہے وہ لگاتی ہیں۔ سامعین، انہوں نے نہ صرف ٹیلی ویژن کے لیے گایا اور نہ صرف اپنے سولو آڈیو البم تیار کیے بلکہ کچھ فلموں کے لیے بھی انہوں نے خوبصورت نغمے جو ہے وہ گائے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فریحہ پرویز کے حوالے سے۔ فریحہ پرویز کا تعلق لاہور شہر سے ہے اور خدا نے جب کسی کو نوازنا ہوتا ہے تو خود بخود ہی راستے بھی کھلنے لگتے ہیں۔
سامعین، طلعت صدیقی، ریحانہ صدیقی، ناہید صدیقی اور عارفہ صدیقی جیسے نامور لوگ جس خاندان کا حصہ ہوں وہاں سے فریحہ پرویز کی آمد بھی خوشگوار ہوا کے جھونکے جیسی ثابت ہوئی۔ شاید یہی وہ مدد تھی جو خدا نے اسے خاندان میں پیدا کر کے اس سے نوازا تھا اور پھر اس نے اس کا بھرپور حق بھی ادا کیا۔
سامعین، فریحہ پرویز بطور اداکارہ اور بطور میزبان شو بزنس کی دنیا میں آئیں، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ان کی منزل یہ نہیں ہے بلکہ ان کی منزل تو موسیقی میں نام بنانا ہے، اور جلد ہی انہوں نے موسیقی کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کی طرح جیسے کہ ناہید صدیقی، ریحانہ صدیقی اور طلعت صدیقی اور عارفہ صدیقی کی طرح انہوں نے موسیقی کا رخ کیا اور بہت جلد جو ہے انہوں نے مقبولیت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی۔ تبھی جب اس نے بطور سنگر اپنا ہنر آزمایا تو ہر طرف سے اسے سراہا گیا۔ اس نے کلاسیکل موسیقی کی ٹریننگ باقاعدگی سے حاصل کی اور جو بھی گایا اس میں کلاسیکل تڑکا ضرور لگایا، اس لیے منفرد لب و لہجے اور مختلف انداز کی بنیاد پر اپنے تمام ہم اثروں کو پیچھے چھوڑتی چلی گئیں۔ और जल्द ही मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंच गईं।
समिन अपने पहले गीत पतंग बाज सजना से उसने जो परवाज पकड़ी, इसे अब तक बोकाटा नहीं किया जा सकता। अपने शौक के बारे में फरीहा का कहना है, म्यूजिक बचपन से ही मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था, लेकिन इस शौक को जला उस वक्त मिली जब मुझे फैमिली की तरफ से पूरी सपोर्ट हासिल हुई।
सामिन, फरीहा परवेज ने अपने पहले एल्बम में जब दिल हुआ बोकाटा गाया तो तब बसंत जो है वो अपने अरूज पर हुआ करती थी। और सामिन, लाहौर के शहर का आसमान जो है वो पतंगों के रंगों से जो है नहाया हुआ लगा करता था, लेकिन बाद अज़ां कुछ नामसाइद हालात की वजह से और रोज बरोज बढ़ते हुए हादसात की वजह से बसंत पर पाबंदी लगानी पड़ी और अब ये कदीम रिवायत जो है तकरीबन दम तोड़ चुकी है। और जब बसंत के दिनों में फरीहा परवेज का गाना ऊंची आवाज में मुख्तलिफ छतों पर चलता था तो लोग दीवानावार इस गाने को सुनते और इस पर सर धुनते हुए नजर आते थे, और फरीहा परवेज को जल्द ही जो है मकबूलियत की सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल गया और जल्द ही वो अपने हम असरों को पीछे छोड़ती हुई मौसीकी की दुनिया में बहुत आगे निकल गईं। वो अपने शौक के बारे में कहती हैं कि म्यूजिक बचपन से ही मेरी जिंदगी का हिस्सा था और जब मुझे खानदान की तरफ से मुआवनत मिली तो फिर मुझे जो है पूरा मौका मिला कि मैं मौसीकी के इस शौक को जो है परवान चढ़ा सकूं। मैं म्यूजिक को अपनी जिंदगी की हर सांस में उतारना चाहती हूं।
वो कहती हैं कि इस बारे में और से और ज्यादा समझने और सीखने की जरूरत हमेशा मुझे महसूस होती है और मैं शौक से सीखती हूं। मौसीकी की दुनिया बहुत बड़ी है, इस कायनात की हर शय रिदम में है और ये दुनिया रिदम में खोई हुई है। मुझे अपनी हर सांस में यही रिदम और सारे गामा की सनसनाहट सुनाई देती है। ये कहूं तो गलत ना होगा कि मौसीकी मेरे अंदर मेरी रूह में रक्स करती है।
सामिन, फरीहा परवेज का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि मौसीकी ही रूह की ग़िज़ा है, शर्त यह है कि मौसीकी अच्छी होनी चाहिए और दिल को सुकून देने वाली होनी चाहिए। पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री मजबूत होने से गुलूकारी का शोभा भी मजबूत हो सकता है, लेकिन अफसोस की बात है कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कोई भी लोग जो है ध्यान देने को तैयार नहीं। दोस्तों, कहती हैं कि जो काम शौक से किया जाए सिर्फ उसी में इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। गुलूकारी कोई आसान काम नहीं, इसके लिए इंसान का दिल भी गुलूकारी के साथ जुड़ा होना जरूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वो कहती हैं कि मैं सीधा सादा भी गा सकती हूं और शायद इसे पसंद भी कर लिया जाता, लेकिन मैंने मौसीकी के उस्तादों से मौसीकी को सीखा। ग्वालियर घराने के मास्टर फिरोज शगन की शागिर्दी इख्तियार की। सामईन, फरीहा परवेज कहती हैं कि अभी भी मैं सोचती हूं कि मैंने शायद बहुत कुछ नहीं सीखा और सीखने को अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बहरहाल सामईन, आप समाज फरमाइए फरीहा परवेज का खूबसूरत नखमा जिसने मकबूलियत के कई रिकॉर्ड बनाए और कई रिकॉर्ड तोड़े। اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، تو کہیں مت جائیے گا، ہم ابھی حاضر ہوئے۔
سامعین یہ ریڈیو ویریتاس ایشیا کی اردو سروس ہے اور آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں فن کی دنیا۔
سامعین آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کی نامور اور مقبول گلوکارہ فریحہ پرویز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جنہیں یہ فن جو ہے وراثت میں ملا۔ ان کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی موسیقی اور اداکاری کے میدان میں اپنا نام بنا چکے ہیں، جن میں طلعت صدیقی، ریحانہ صدیقی، ناہید صدیقی اور عارفہ صدیقی شامل ہیں۔ دوست فریحہ پرویز نے گزشتہ دنوں کوک اسٹوڈیو میں بھی کچھ مشہور گانے گائے اور اکثر گانے جو ہیں انہوں نے فیوژن میں ہی گائے۔ جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا تو وہ کہتی ہیں کہ فیوژن بھی موسیقی کا ایک حصہ ہے، فیوژن روایت اور جدت کا ملاپ ہے، اس کو نبھانا اور اس سے انصاف کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ کچھ لوگ کلاسیکل گاتے ہیں، کچھ لوگ فوک گاتے ہیں اور کچھ پاپ گاتے ہیں، مگر بہت کم ہیں جو روایت اور جدت کے ملاپ سے بنے فیوژن کے ساتھ نبھا کر پاتے ہیں۔ سامعین اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ فوک میوزک کے حوالے سے بھی فریحہ پرویز نے بے شمار کام کیا، لیکن فیوژن گا کر وہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ان سے جب پوچھا جائے کہ انہیں کیسے گانے پسند ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے میڈم نور جہاں کے گائے ہوئے گیت بہت پسند ہیں، میں جہاں بھی جاتی ہوں اکثر مجھ سے میرے مقبول گانے دل ہوا بو کاٹا کی فرمائش کی جاتی ہے، لیکن جہاں مجھ سے میری پسند کے مطابق گانے کو کہا جاتا ہے تو میں وہی گیت گاتی ہوں جو میڈم نور جہاں نے گائے ہوں۔ ان کے گائے گیتوں میں وہ فن اور لوچ ہے جو اب کہیں اور نہیں مل سکتا، ان کا متبادل کوئی نہیں، اور میں میڈم کو گاتے ہوئے آنکھیں بند کیے خود کو ان کے ساتھ چلتے ہوئے محسوس کرتی ہوں۔
سامعین وہ کہتی ہیں کہ یہ سچ ہے کہ پاکستان میں فلم انڈسٹری کے زوال کی وجہ سے گلوکاری کا شعبہ بھی متاثر ہوا ہے، اگر فلم انڈسٹری مضبوط ہوگی تو اس سے گلوکاری کا شعبہ بھی یقیناً ترقی کرے گا، لیکن اس پر بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ فلم انڈسٹری کسی راستے کی طرف چلنا شروع ہوئی ہے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس سے हमारे फनकारों का किस कदर फायदा हो रहा है, पूरी फिल्म बाहर से बन जाती है। और म्यूजिक के हवाले से बात करें तो सिंगर और कंपोजिशन और म्यूजिशियंस भी बाहर के ममालिक से ही ले लिए जाते हैं हम, और हमारा काम पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें इस बात को भी फरामोश नहीं करना चाहिए कि इनके यहाँ कामयाबी के झंडे हमारे सिंगर्स नहीं गाड़े हैं। जैसे वो हमारे फनकारों की इज्जत करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने फनकारों को इज्जत और वो मुकाम देना चाहिए जिसके वो हकदार हैं।
सामिन, वो कहती हैं कि अगर यही काम होता रहा और हम अपनी फिल्मों में दूसरे सिंगर्स और म्यूजिशियंस से काम लेते रहे तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ म्यूजिक जो है वो फले फूलेगा नहीं और कभी भी इसको वो अरूज नहीं मिलेगा जो गुज़श्ता कुछ अरसा पहले इसे हासिल था। वो कहती हैं कि हमें अपने फनकारों की इज्जत करनी चाहिए और सबसे बढ़कर ये है कि ऐसे इकदाम करने चाहिए कि ये फनकार जो हैं वो अपने फन को बेहतर अंदाज में लोगों के सामने पेश कर सकें और उन्हें किसी किस्म का कोई मसला न हो। वो कहती हैं कि जिस तरह से हमें बाहर ममालिक में जाके इज्जत मिलती है, अफसोस की बात है कि अक्सर अपने ही मुल्क में वो इज्जत नहीं मिलती और यही वजह है कि शायद बहुत से फनकार जो हैं अब दूसरे मुल्कों का रुख करते हैं। सामिन, फ्रीहा परवेज कहती हैं कि मैंने हमेशा जो है अपने आप को मौसीकी की एक तालिबा ही समझा है और हमेशा सीखती रहती हूँ ताकि अपने फन को जो है बेहतर कर सकूं। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है या मैंने सारा कुछ सीख लिया है, क्योंकि जब भी मैं सोचती हूं कि मैंने ये सीखा है तो मुझे कुछ और सीखने को मिल जाता है और फिर मैं उसमें लग जाती हूं। वो कहती हैं कि हमारे मुल्क में भी बेपनाह बासलाहियत फनकार मौजूद हैं और हमें चाहिए कि हम उनके काम को सराहें और अगर फिल्मों में मौका दिया जाए उन्हें तो यकीनन उनको अपने काम को निखारने में मदद मिलेगी और इससे उनका एतमाद भी बढ़ेगा। हम सबको खुद मिलकर उन्हें एतमाद देना होगा और हमें अपने ही मुल्क में बनने वाली फिल्मों में उनके लिए गुंजाइश पैदा करनी होगी। सामिन, वो कहती हैं कि सारी दुनिया बदल गई है। मैं जो कभी गुलुकारा बनने के चक्कर में बनी फिरती थी, बसों वैगनों में मैं धक्के खाती हुई पीटी भी जाया करती थी, अब खुदा का बड़ा करम है, खुदा ने हर नेमत से नवाजा है और लोगों के रवैयों में भी जमीन और आसमान का फर्क आ गया है। लेकिन आज भी मुझे वो दिन कभी नहीं भूलते जो मैंने फन के लिए जो है धक्के खाने में गुजारे। वो कहती हैं कि मुझे अपने माँ बाप से बेपनाह प्यार मिला और मैं चाहती हूं कि हमेशा इसी तरह फन की खिदमत करती रहूं और फन की दुनिया में अपना एक नाम बनाऊं। सामईन, ये थी फरीहा परवेज के हवाले से चंद मालूमात, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अभी आपकी समातों की नजर करते हैं फरीहा परवेज का एक खूबसूरत गाना। आप समात फरमाइए फरीहा परवेज का ये नगमा और अपने मेजबान आमिर सुहेल और फ्रांसिस सेवियर को आइंदा हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए।
कुछ कुछ कहें। ہمارے ہاں